महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसां, भूतबलिप्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर हम आगे 65। यह अंतर प्ररूपणा में हम जघन्य अनुभाग बंध के अंतर की बात देख रहे थे, और मार्गणाओं में हमने औदारिक कायोगी जीवों में देखा था, पर उसी का विशेषार देखते हैं। देखो क्या कहते हैं पेज नंबर 65, औदारिक कायोग में
विशेषार।
हाँ, मैंने वो कल का रिविजन हो जाएगी ना फिर दोबारा उसकी, तो उसका जघन्य कहाँ होता है, तो क्षपक में, तो श्रेणी में, क्षपक श्रेणी में अंत में। तो औदारिक कायोग में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए उसका अंतर नहीं कह दिया, दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है। अब कहते अजघन्य उपशम श्रेणी में उपशांत मुह के काल से औदारिक कायोग का काल अल्प है, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल निषेध किया है। अजघन्य का भी निषेध क्यों किया है? देखो 11वें गुणस्थान में अजघन्य का तो अंतर पड़ सकता है, पर 11वें गुणस्थान में एक ही योग नहीं रहता है, तीनों योगों का पलटना होता है, इसलिए अकेले कायोग के रहते हुए, औदारिक कायोग के रहते हुए केवल कायोग कहा था तो हमने देव में मरकर गए जाने वाले को भी कायोग तो रहता ही है ना, कारमान हो वैकरेक मिश्र हो, कायोग का कायोग रहा, वहाँ तो अंतर घटित क्या था एक समय से अंतर्मुख, परंतु औदारिक कायोग के रहते हुए श्रेणी चढ़कर पूरा फिर उतरा नीचे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अंतर नहीं कहा। इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले के होता है, यतः औदारिक कायोग में यह अवस्था कम से कम एक समय का अंतर देकर, यानी बीच में अजघन्य किया तो जघन्य का अंतर हुआ, और उत्कृष्ट से कुछ कम 22,000 वर्ष के अंतर से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये जो मध्यम परिणाम में जघन्य है वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय कोई भी जीव कर सकता है, इसलिए औदारिक कायोग का उत्कृष्ट काल कितना है एक जीव की अपेक्षा 22,000 वर्ष, कुछ कम, कुछ कम इसलिए कि औदारिक मिश्र का काल उसमें से घटाना पड़ेगा, इसलिए कुछ कम 22,000 वर्ष के अंतर से प्राप्त हो सकते, इसलिए इसमें इन दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 22,000 वर्ष का। जघन्य का उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए जहाँ काय स्थिति है वहाँ काय स्थिति लेना, अभी यहाँ औदारिक कायुग में उसका उत्कृष्ट काल लेना, इस तरह से हमको सोचना है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर चार समय स्पष्ट ही है। स्पष्ट क्यों है? क्योंकि तब जघन्य का बंध लगातार चार समय तक होता है तब अजघन्य का अंतर होगा, क्योंकि इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल चार समय कहा है, इससे इनके अजघन्य अनुभाग बंध का उक्त प्रमाण अंतरकाल उपलब्ध होता है। अब आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है तथा औदारिक का योग में प्रथम त्रिभाग से दूसरी बार आयु बंध के काल में उत्कृष्ट अंतर साधिक 7000 वर्ष है। दूसरी बार ने वो आठवां त्रिभाग लेना, पहले और आठवें बार के बीच का अंतर। पहली बार कब बांधा पृथ्वी का एक ने 22000 का वंथर पहले अवसर में, फिर दोबारा बांधना चाहिए उसी योग के रहते हुए आखिर में आठवें अपकर्ष में, यानी पहले और आठवें अपकर्ष के बीच। यानी वहां असंशय पैदा नहीं कह सकते हम, क्योंकि पहली बार बांधा है ना, जिसने आठवीं बार नहीं बांधा है उसका वो असंशय पैदा काल में बनता है, इसलिए पहली बार और आठवीं बार ऐसा लेना। इसलिए आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, जब कभी बंध रहा है तो बीच में जघन्य से अजघन्य, अजघन्य से जघन्य हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 7000 वर्ष का है। साधिक 7000 वर्ष 22000 वर्ष का बंधर लेना है, इसलिए साधिक 7000 का। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध, अभी हमारा कौन है औदारिक का योगी जीव है तो वो नारकी को लेते वो नहीं ले सकते, तो अग्नि का एक वायु का एक लेंगे। तो गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध बादर अग्नि का एक और बादर वायु का एक जीवों के होता है। अब उनमें हमको औदारिक का योग का लगातार काल देखना है, तो उत्कृष्ट आयु वाला इनमें से कौन है
वायु
का, उसकी कितनी आयु जल का एक 7000 वर्ष, इसकी 3000 वर्ष। तो कहते देखो उसमें भी बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट स्थिति, ये स्थिति कहने से भव स्थिति 3000 वर्ष है, इसलिए इसमें गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3000 वर्ष का, क्योंकि शुरुआत में वो भी औदारिक मिश्र में था, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद औदारिक का युग चालू हो गया, वो थ्रू आउट वही रहेगा। तो शुरुआत में एक बार उसने जघन्य किया और आयु के अंत में एक बार जघन्य किया, ये उत्कृष्ट अंतर हुआ।
अग्नि का एक जीवन की अपेक्षा से विचार किया जाए तो जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर तीन दिन
रात कुछ कम, वो कुछ कम लगा लेना उसने। देखो अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय स्पष्ट ही है। यहाँ क्यों दो समय लिया, क्योंकि अति विशुद्ध में उसका जघन्य बंधेगा, हमने देखा ना अति संकलेश अति विशुद्धि दो समय तक ही हो सकते हैं, और जहाँ मध्यम परिणाम होता है वहाँ चार समय बनते हैं। शेष कथन सुगम है। ये तो हो गई औदारिक कायोगी की विशेषता विशेषार्थ हमने देखा। अब वैक्रिय कायोगी जीवों में वैक्रिय कायोगी कौन है, देव और नारकी, और चार घाती कर्मों का जघन्य कहाँ होगा, जहाँ विशुद्धि ज्यादा होगी, तो विशुद्धि कहाँ ज्यादा होगी, तो चौथे गुण स्थान में, तो जघन्य लगातार दो समय तक हो सकता है। अब और वैक्रिय कायोग का लगातार काल कितना हो सकता है,
वैक्रिय कायोग नहीं नहीं वो तो अंतर मुहूर्त है,
कल भी यही बात की थी ना, इन्होंने कहा 33000 नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्रिय कायोग भी होगा, मनोयोग भी होगा, वचन योग भी होगा, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा। अब ये सब ख्याल में रखकर यहाँ बात करें, अन्यत्र क्या कहते हैं उस जीव की काय स्थिति या भव स्थिति लेते हैं, यहाँ तो वैकृत कायोग का काल लेना है उत्कृष्ट, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। देखो अभी पढ़ते हैं, वैकृत कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त, क्योंकि वो वैकृत कायोग के रहते हुए उसको दोबारा जघन्य करेंगे तो ही उसका अंतर हम कह सकते हैं उसको। और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय, क्योंकि सर्व विशुद्धि में लगातार दो समय तक वो जघन्य कर सकता है। अजगण्य अनुभाग बंध का, ये हो गया एक समय दो समय। अब वेदनीय, आयु और नाम कर्म के, अब ये कहाँ होता है तो मध्यम परिणाम में होता है। जघन्य अनुभाग बंध का, अभी आयु तो एक ही बार बंधेगी, वो एकीकृत का योग है। जैसे हम देवयान आरकी में 6 महीने की बात करते हैं, वो यहाँ घटित नहीं होगी और दो बार आयु भी नहीं बंधेगी। एक ही बार जो अंतर्मूर्त बंधनी है वो वैकृत काय योग का जो अंतर्मूर्त है, उसमें भी शुरुआत में जघन्य किया, अंत में जघन्य किया, ये हो सकता है। और अजघन्य के अंतर के लिए बीच में जघन्य किया तो अजघन्य का अंतर होगा। अब पढ़ेंगे, देखो, वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर चार समय, आयु के लिए भी यही घटित होगा। यहाँ तक ख्याल में आई ना बात? अब कहते हैं गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है। वैकृत का युग में जघन्य कौन करेगा? तो सातवें नरक का नारकी, सम्यक तो के सन्मुख वाला, तो वो काय योग में उसको सम्यक तो के सन्मुख हुआ है। वो एक बार जघन्य किया तो चौथे गुणसार में रहते रहते कितने बार उसका योग पलट जाएगा, तो दोबारा अंतर्मुहूर्त में जो करेगा समय, तो बाय दैट टाइम उसके योग बहुत बार पलटेंगे। इसलिए ओग में तो हमने अंतर्मुहूर्त अंतर देखा था मिनिमम, और मैक्सिमम कुछ कम अर्ध पुजगल, वो यहाँ नहीं ले सकते, यानी अंतर नहीं है। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। देखो ये कैसे, वैकृत का युग शुरू हुआ तो करण लब्धि के अंत में आया था, तो पहले तो उसने अजघन्य किया, फिर जघन्य किया, वहां तक तो नीच गोत्र बांध रहा था, फिर सम्यक को प्राप्त किया, पहले ही समय में उच्च गोत्र बांधा, तो उसका अनुभाग तो अनंत गुना ज्यादा है, परंतु वो अजघन्य होगा। हाँ, ख्याल भी आई ना बस? यहाँ तो उसने नीच गोत्र बांधा था, वहां उच्च गोत्र बांधा है। हमारी मूल प्रकृति की बात चल रही है, इसलिए व्हाटएवर बांध रहा है वो अजघन्य था, एक समय के लिए जघन्य था, इसलिए जघन्य का अंतरकाल नहीं। और अजघन्य का जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर एक समय। यानी वो पहले नीच गोत्र बांध रहा था, फिर उच्च गोत्र। समय दृष्टि तो उच्च गोत्र बांधेगा जो अजगण नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार आहारक का योगी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म का भंग ज्ञानावरण के समान, क्योंकि गोत्र कर्म का जघन्य का कितना होगा?
गोत्र कर्म का एक दो समय,
अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, क्योंकि आहार काय योग का जो काल है वो अंतर्मूर्त होगा। परंतु वहाँ गोत्र कर्म के अजघन्य का दो समय कैसे होगा? गोत्र कर्म के अजघन्य, वो तो मध्यम परिणाम में जघन्य होगा ना? नहीं नहीं सॉरी, उच्च गोत्र ही बंध रहा है, बराबर है, उच्च गोत्र ही बंध रहा है, अति संकलेश में जघन्य होगा, इसलिए ज्ञानावरण के समान यानी दो समय घटित होगा। अन्यत्र अन्यत्र गोत्र कर्म को कहाँ लेते हैं? मध्यम परिणाम में। ये ज्ञानावरण के समान क्यों? क्योंकि अति संकलेश में जघन्य बंधेगी, क्योंकि उच्च गोत्र ही बंध रहा है, अन्य गोत्र बंध ही नहीं रहा, इसलिए उसको लिया। वहाँ नीच गोत्र के लिए हम सर्व विशुद्धि में जघन्य लेते थे, यहाँ उच्च गोत्र ही बंधेगा तो उसका जघन्य तो संकलेश में होगा, इसलिए गोत्र कर्म की अलग से बात की। वेदनी आयु नाम कर्म के लिए तो ऐसा ही होगा कि जघन्य का अंतर एक समय से अंतर्मूल, और जघन्य का अंतर एक समय से चार समय। कार्मण कायोगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। हमने देखा ना कि दूसरे समय में दो मोड़ लेने वाले के दूसरे समय में जघन्य होता है, बाद में कर्मण का योगी नहीं रहेगा। इतनी विशेषता है कि वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, और वो भी किसको होगा? तीन समय वाले को होगा। वेदिनी को मध्यम परिणाम एक इंद्रिय के भी हो सकते, एक इंद्रियों के तीन मोड़ में तीन समय लग सकते उसके, इसलिए एक इंद्रिय में वो घटित हो सकता है। और बाकी हमने जो सात कर्म है चार घाती के लिए क्या लेना है, वो संकलेश में उसके विशुद्धि में जगह नहीं होगा चार घाती का, इसलिए वो सेकंड नंबर पर लेना है। और कर्मण का योग में यहाँ गोत्र को छोड़ दिया उन्होंने, सात कर्मों में ले लिया और उसमें से वेदिनी नाम कर्म को अलग लिया। आयु तो बनती नहीं है, मैंने अपन सात सबको लिया, गोत्र को भी वहां लिया और वेदिनी नाम कर्म की बात अलग से बताई, क्योंकि वेदिनी नाम कर्म मध्यम परिणाम में बंधेंगे पर गोत्र मध्यम परिणाम में नहीं बंधेगा ना। यहाँ पर
कितना हुआ सात में, जो चार घाती
सभी आ गए ना,
और तो फिर इसमें वापस
वो विशेषता लिखने के लिए पहले तो सबके लिए अंतरकाल नहीं, परंतु वेदिनी नाम कर्म के लिए है ये बात। क्योंकि कर्मण का योग में आप स्वामित्व देखो, गोत्र कर्म का भी उन्होंने अंतर नहीं बताया जघन्य का, तो किसके होगा गोत्र कर्म का जघन्य कर्मण का योग में? नरक में जाने वाला, सातवें नरक में जाने वाला, विग्रह गति में होगा ना, सातवें नरक का विग्रह गति में भी उसकी जो विशुद्धि वाला जीव लेना है ना, तो उसकी जो विशुद्धि वाला है तो निज गोत्र अधिक जघन्य बन देगा उसको। निकालो स्वामी तो निकालो, कर्मण का योग में स्वामी तो निकालो। अभी वहाँ पहुँच उसके योग्य विशुद्धि ले लेना, जाने के पहले ही संकलेश था वहाँ विशुद्धि हो गया। 21 निकला मेरा, हाँ नीचे से तीसरी लाइन, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि नारकी है ना। और वेदिनी नाम का तो कोई भी परिवर्तमान मध्यम बन कोई भी हो सकता है, और उसमें अंतर इसलिए जहाँ दो ही समय वहाँ अंतर का सवाल नहीं है, जहाँ तीन समय वहाँ बीच वाले जघन्य अजघन्य हो सकता है, इसलिए वो एक इंद्रिय में वो घटित हो जाएगा एक समय की बात। किसमें? गोत्र में नहीं होगा और अन्य चार घाती में भी नहीं होगा, इसीलिए पहले बता दिया सात में नहीं है, पर सात में से वेदिनी नाम को तो होता है, इसलिए उसकी बात अलग से बताई। पेज नंबर 65 लास्ट लाइन, इसी प्रकार अनाहारक जीवों के जाना चाहिए। आहार मार्गणा में अनाहारक कहो या योग मार्गणा में कर्मण का योगी को बात एक ही होती है, विशेषार्थ बता रहे। देखिए 66 पेज पर वैकृत का योग में, वैकृत का योग से बात चालू है, चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग पे बंध योग्य परिणाम कम से कम एक समय अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल के अंतर से होते हैं, क्योंकि जो वैकृत का योग का काल है उसके शुरुआत में और अंत में उसने जघन्य किया, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा। इसके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जघन्य का लगातार बंध दो समय तक हो सकता है, इसलिए इसका अजघन्य का अंतर बताया। वेदनीय आयु और नाम कर्म का बंध मध्यम परिणामों से होता है, यत यत करते हैं क्योंकि ये परिणाम कम से कम एक समय अधिक से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से हो सकते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का है, क्योंकि वैकृत का योग का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए अंतर्मूर्त का अंतर बताए। इनके अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल स्पष्ट किए, वो कितना था तो एक से चार समय, वैकृत आयु के लिए भी एक से चार समय होगा। वैकृत का योग के काल में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध के योग परिणाम दो बार नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा उसका स्वामी सातवें नरक का नारकी है, सम्यक के सन्मुख वाला। समय दृष्टि होगा तो कितनी बार उसके मिनिमम काल अंतर्मूर्त रहेगा तो भी योगों का पलटना होगा, इसलिए दो बार नहीं होते, एक ही योग के रहते हुए वैकृत का योग के रहते हुए। इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभाग बंध के अंतर काल का निषेध किया है, शेष कथन सुगम। उसका लिया नहीं उन्होंने, हमने सोच लिया उसका। अब वेद मार्गणा शुरू होती है यहाँ पर। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। देखो चार घाती कर्मों का जघन्य कहाँ है तो क्षपक्य है, वेद के उदय के रहते हुए अंतिम समय में उसका जघन्य हो गया, फिर दोबारा जघन्य होने का कोई सवाल नहीं। एक बार तब तक तो अजघन्य तो था ना, अजघन्य का अंतर कब हो सकता है? जघन्य करेगा पर बाद में फिर दोबारा बंद नहीं होगा, तो उपशम श्रेणी में हो सकता है। पर जब सवेद गुण लेना हमको, स्त्री वेदी है वो अपगत वेदी हो गया तो बंध का अभाव हुआ, परंतु वो अपगत वेदी हो ना, अभी अपगत वेदी है, वो मार्गणा पलट गए। स्त्री वेद के रहते हुए बंध रुक जाए फिर दोबारा हो, ये नहीं हो सकता, इसलिए अंतिम समय तक अजघन्य है। उपशम श्रेणी में भी स्त्री वेद के रहते हुए अंत तक तो अजघन्य उतरेगा, तो अपगत वेदी होकर उतरेगा, फिर स्त्री वेदी होगा तो बंध शुरू होगा, पर वो कंटिन्यूएशन में मार्गणा नहीं रहेगी। पुरुष वेदी में कैसे गिलेंगे? पुरुष वेद का पुरुष वेद रहा, मरकर देव में जाएगा तो भी, इसलिए ग्यारहवें में नहीं जा सकते, अपगत वेदी हो जाता। तो यहाँ पर भी मरण नहीं कर सकते, मरण करेगा तो वेदी का वेदी रहा, बीच में बंधन न हो ये बात नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर भी अंतर नहीं होगा। ख्याल में आई बात? देखो फिर पढ़ते, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। अन्यत्र कहीं कहीं हमने पुरुष वेदी में जहाँ बंधन नहीं था तब की बात की थी, वो किसके लिए होगा? वो अन्य प्रकृति के, जो उत्तर प्रकृति में आठवें में वगैरह जो बंधु इच्छित थी उसकी बात करेंगे, यहाँ तो जनरल बात चल रही है, यहाँ हम तो मूल प्रकृतियों की बात हो रही है। अब वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, अब यहाँ क्या लेना है, मध्यम परिणाम में कोई भी कर सकता है, तो स्त्री वेद में रहने का जो उत्कृष्ट काल है वो जघन्य का अंतर होगा उत्कृष्ट, तो कहते हैं उत्कृष्ट अंतर क्रम से, क्रम से यानी स्त्री वेदी के लिए 100 पल्ल्य पृथक और पुरुष वेदी के लिए 100 सागर पृथक प्रमाण है, यानी बहु के पहले समय में उसने यानी पर्याप्त होकर उसने संगी पंचेंद्रिय स्त्री वेदी वाले ने नहीं नहीं किसी ने भी किया, स्त्री वेदी था बस इतना, वो तो संगी था असंगी था उससे मतलब नहीं, मध्यम परिणाम वाले को जघन्य होता है, उत्कृष्ट के लिए हमको वो सोचना पड़ता था, यहाँ तो जघन्य की बात है। तो उसकी काय स्थिति लेना है, स्त्री वेदी की काय स्थिति और पुरुष वेदी की काय स्थिति, और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर चार समय, यहाँ पर भी श्रेणी वाली बात नहीं ले सकते, जब वो जघन्य कर रहा है तभी उसका अजघन्य का अंतर होगा, तो लगातार जघन्य चार समय तक हो सकता है, इसलिए अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर चार समय लिया। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण है, जघन्य की बात है, जघन्य उसने दोबारा जघन्य बांधा ही नहीं, पहले भाव में जगन्य बांधा अनुभाग और अंतिम भाव में अजगन्य बांधा। आयु के लिए भी जगन्य के लिए तो वही है, परंतु अजगन्य यानी प्रकृति बंध जिसको कहेंगे, हर भाव में आयु का बंध तो होगा ही होगा। तो अजगन्य के उत्कृष्ट अंतर के लिए हम पढ़ने के पहले आप सोचो,
अजगन्य का
उत्कृष्ट अंतर स्त्री वेदी के रहते हुए
एक ही लेना पड़ेगा ना, 55 पल्ले पर नहीं लेंगे,
साधिक 55 पल्ले, जैसे हमने अनुत्कृष्ट में देखा
हाँ।
यानी कि आयु बांधी बस इतना ही लेना, वहां पर जगन्य के लिए पूरी काय स्थिति लेना, अजगन्य के लिए दो दो भाव
लेना,
पहला वंथर लेना पड़ेगा तो पूर्व कोटि का वंथर, और 55 पल्ले में लास्ट में जाके उसने आयु बांधी। यहाँ पढ़ेंगे अभी देखो, आयु कर्म का जगन्य तो देखा काय स्थिति, अजगन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ल्य स्त्री वेदी के लिए और साधिक 33 सागर पुरुष वेदी के लिए। इसलिए क्रम से उन्होंने दोनों ही बता दिया। दोनों को एक साथ हो रहा है ना, इसलिए क्योंकि स्त्रीवेदी में एक भाव 55 पल्ले का हो सकता है देवी का, पुरुष वेदी में तो देवों का 33 सागर का हो। अब नपुसक वेदी जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं, जैसे हमने स्त्रीवेदी पुरुष वेदी में देखा था, यहाँ पर भी उसका जघन्य होगा क्षपक्ष में, अजघन्य का वेद के उदय रहते हुए अंतर नहीं पड़ेगा। वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है। तो हमने देखा था नपुसक वेदी यानी वो तो नपुसक वेद तो लगातार अनंत काल तक रह सकता है, तो मध्यम परिणाम किया उसने जघन्य किया, और भले अनंत काल तक नपुसक वेदी रहते हुए भी असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद उसके मध्यम परिणाम लौटकर हो गए ही हो गए, तो उसको असंख्यात लोग कहेंगे। देखो वेदिनी आयु और नाम कर्म की बात है ना, तो वेदिनी और नाम कर्म के लिए क्या कहेंगे, एक समय से असंख्यात लोग, और नपुसक वेद के उदय के रहते हुए इसके अजघन्य का अंतर कब होगा, वो जब जघन्य बांध रहे तो एक समय से चार समय, क्योंकि यहाँ पर भी 11वां गुणस्थान नहीं होता है। अब आयु के लिए देखते हैं, नपुसक वेद में जघन्य आयु बांधी उसने तो एक समय के अंतर से बांध सकता है, वहां पर भी असंख्यात लोक लेना। अजघन्य के लिए जो अभी हमने देखा था पुरुष वेद में कैसे लिया, साधिक 33 सागर, नपुसक वेद में भी नरकायु बांधकर साधिक 33 सागर, पूर्व कोटि वाले मनुष्य ने या मत्स्य ने वंथर पूर्व कोटि पहले नरकायु बांधी, फिर 33 सागर वाले ने नारकी ने अंत में जाके तीरें चाहिए बांधी, वो अजगण्य थी बस इतना ही, जगन्य नहीं थी। तो साधिक 33 ये समझ में आती है ना, जगन्य का उत्कृष्ट अंतर दो वेदने नाम और आयु के लिए तीनों के लिए असंख्यात लोग होता है, पर अजगण्य का आयु के लिए अलग है, क्योंकि वेदनीय और नाम तो हर समय बंध रहे, इसलिए उसके अजगण्य का अंतर तो चार समय बताया था, पर आयु तो बहु में एक बार बनती फिर नहीं बनती है, ये इस बहु में बंधी और दूसरे बहु में लास्ट में बंधी। इसलिए देखो फिर पढ़ते, वेदनीय आयु और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओक के समान है, यानी एक समय से असंख्यात लोग जघन्य के लिए, अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल पुरुष वेदी जीवों के समान है, जो अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि वेदिनीय नाम के लिए क्या है, एक से चार समय हाँ, और आयु के लिए साधिक 33 साल। गोत्र कर्म के, अब पुरुष वेदी में तो गोत्र कर्म वगैरह सब इकट्ठा लिया था, वेदिनीय नाम गोत्र, नपुसक वेदी में गोत्र का जघन्य तो नारकी करेगा, तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओग के समान है। ओग के समान कैसे, उसने जघन्य करना है, नपुसक वेदी रखना है, सातवें नरक के नारकी ने सम्यक को सन्मुख अवस्था में जघन्य किया, वहाँ नीच गोत्र बांधा, सम्य दृष्टि हुआ और फिर अंतर्मूर्त में फिर मिथ्या तो करके फिर सम्यक तो प्राप्त, तो उसका अंतर अंतर्मूर्त हुआ, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त हुआ, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल नपुसक वेदी रहा ना, इसलिए उप के समान कह दिया, यानी नपुसक वेदी रहा, मिथ्या तो में घूमा, फिर सातवें नरक का नारके होकर फिर किया और फिर वहां से निकलेगा, एक तीर्यन से बहु करेगा, मनुष्य होगा, फिर मोक्ष जाएगा। देखो आगे, नहीं नहीं सॉरी, वो जघन्य का अंतर देखा मैंने,
अजघन्य का बोलो
ना, अजघन्य अजघन्य का नहीं अर्ध पुद्गल, जघन्य का अर्ध पुद्गल, जघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, ना ना एक समय होता ही नहीं है, देखो जघन्य कब होगा, समय तो के समय, एक समय के बाद फिर कैसे होगा, है मैं तो एक बार किया तो अंतर्मूल के बाद दोबारा कर सकते हैं, तो ये जघन्य का जघन्य अंतर हुआ और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल पर हुआ, अजघन्य का तो अभी हम पढ़ना है हमको, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय, जैसे हमने वैखरिक कायोग में भी देखा था, ओग के समान, हाँ अंतर्मूर से अर्ध पुद्गल परावर्तन, अजघन्य का जघन्य भी और उत्कृष्ट भी एक समय, क्यों, वो एक ही समय के लिए सम्यक्त के सम्मुख वो अंतिम करण लब्धि का अंतिम समय लेना, वहां उसका जघन्य, तो हमने क्या पहले वो निज गोत्र का बांध रहा था उसको भी अजघन्य कहेंगे, लास्ट में जघन्य किया, समय दृष्टि होगा तो उच्च गोत्र बांधने लगा, वो तो अनंत गुणा अधिक है तो उसको कहेंगे अजघन्य एक समय हो गया। अब अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है, देखो सात में चार घाती कर्मों का जघन्य तो शपक में होगा, अंतर का होता ही नहीं, अब किसका होगा दूसरा, वेदिनी नाम, वेदिनी नाम गोत्र का जघन्य कब होगा, सारे प्रशस्त प्रकृतियां बन रही है जहां संकलेश होगा, यानी श्रेणी उतरते हुए अंतिम समय, अंतिम समय में जहाँ जघन्य उसका जघन्य होगा तब जाके वो सवेदी हो जाएगा, अपगत वेद रहते हुए दोबारा उसका जघन्य नहीं हो सकता, कल नहीं बात, इसलिए जघन्य का अंतरकाल नहीं, अजघन्य अनुभाग बंध का सातों के लिए अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी ग्यारहवें गुणस्थान का काल लेना और मोनी के लिए दसवें ग्यारहवें का और फिर दसवें का काल लेना, क्योंकि उसको उसी भाव में रखना है, अपगत वेद मार्गना छूटने नहीं चाहिए, मरेगा तो पुरुष वेदी हो जाएगा, विशेषात स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों के शपक श्रेणी में अपने अपने वेद की उदय विच्छित्ति के अंतिम समय, जब तक उसका उदय है तब तक उसको स्त्रीवेदी या पुरुषवेदी कहेंगे, तो उसके उदय की विच्छित्ति का अंतिम समय लिया, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंद होता है, क्योंकि हमारी मार्गणा वेद वाले की है तो वेद के उदय का अंतिम समय तक वहाँ जो चार घाती कर्मों का बंध है वो जघन्य है, तथा इसके पहले इनके अजघन्य अनुभाग बंद होता है, इसलिए इन जीवों के चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध है, जिस मार्गणा में वो दसवां ग्यारहवां गुणस्थान होता है वहाँ तो हमको जघन्य का अंतर अजघन्य का भी सोच सकते हैं, यहाँ नहीं सोच सकते। इन जीवों के स्वामित्व को देखते हुए वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध एक समय के अंतर से संभव होने से, क्योंकि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी है, नपुसक वेदी में तो नारकी को लिया था, स्त्री पुरुष वेदी में तो वेदिनी नाम हो, मध्यम परिणाम कहीं पर भी होगी तो एक समय के अंतर से हो सकता है। यहाँ इन तीन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय कहा, और जघन्य अनुभाग बंध का ही उत्कृष्ट अंतर क्रम से सौ पल्ल्य पृथक स्त्री वेदी की काय स्थिति और सौ सागर पृथक पुरुष वेदी की काय स्थिति। कहने का कारण यह है कि इन जीवों के अपनी काय स्थिति के प्रारंभ और अंत में जघन्य अनुभाग बंध होकर मध्य में सतत अजघन्य अनुभाग बंध होते रहना संभव है। यहाँ इन तीन कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय, इनके जघन्य अनुभाग बंध के जघन्य और उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर कहा है। जो जघन्य का काल है वो अजघन्य का अंतर है, यह स्पष्ट ही है। आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक अपनी अपनी कुछ कम काय स्थिति के अंतर से हो सकता है, इसलिए यह अंतर उक्त प्रमाण कहा है। तथा आयु कर्म का अजघन्य अनुभाग बंध एक समय के अंतर से होने पर इसके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय का है। जब आयु बन रही है कहीं पर भी बीच में जघन्य होगा तो अजघन्य का अंतर हो जाता है। और जिस पुरुष वेदी या स्त्री वेदी मनुष्य ने आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 33 सागर और 55 पल्ल्य बांधते समय अजघन्य अनुभाग बंध किया, पुनः 33 सागर और 55 पल्ले की आयु के अंत में पुनः आयु कर्म का अजघन्य अनुभाग बंध किया, उस पुरुष वेदी और स्त्री वेदी जीव के आयु कर्म का अजघन्य अनुभाग बंध क्रम से साधिक 33 सागर, क्योंकि पुरुष वेदी की उत्कृष्ट आयु देव की 33 सागर की है और साधिक 55 पल्ले उपलब्ध होता है। ये वंतर पूर्वकोटि दोनों में समान लेना, पर वहाँ की उनकी आयु जो है बड़ी आयु उसको लेना होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। ये तो स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की बात हो गई। नपुसक वेदी के पुरुष वेदी के समान चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल संभव नहीं है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वेद के उदय रहते हुए वो तो अंतिम समय में उसका क्षपक में जघन्य होगा, बाकी के तो अजघन्य ही है, तो ना जघन्य का अंतर है ना अजघन्य का। तथा ओह प्ररूपणा के समय वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जो अंतर कहा वह नपुसक वेद में संभव है, इसलिए यहाँ यह कथन ओह के समान कहा है। मात्र इसमें से पहले तो समान कहा, फिर उसमें जो डिफरेंस है पहले गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय से अधिक उपलब्ध नहीं होता अजघन्य का, क्योंकि उसका जघन्य एक ही समय के लिए होता। फिर से सुनो, पहले में पहले सबको इकट्ठा लिया वेदनी आयु नाम गोत्र के लिए, अभी गोत्र को छोड़ो तो वेदनी आयु और नाम के लिए क्या कहा, तो यानी उसका जघन्य करना है तो जघन्य ओघ में क्या लिया था, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग, यहाँ क्या लिखा वेदनी आयु नाम के लिए असंख्यात लोग ही था, गोत्र के लिए मिनिमम अंतर अंतर्मूर्त और मैक्सिमम अर्ध पुद्गल, ख्याल में है ना। वेदनी आयु नाम के लिए असंख्यात लोग क्यों, क्योंकि इतने काल के बाद लौट कर वो परिणाम होगी होगी। मात्र गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय से अधिक उपलब्ध नहीं होता अजघन्य का, यानी जघन्य एक समय के लिए होता है उसका अर्थ, क्योंकि नपुंसकों में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय ही उपलब्ध होता है, वो सातवें नरक में सम्यक्त के सन्मुख वाले को होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। अपगत वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में होता है और शेष तीन कर्मों का उपशम श्रेणी से गिरते समय अपगत वेद के अंतिम समय में होता है। शेष तीन ने वेदिनीय नाम और गोत्र, क्योंकि देखो चार घाती है वो अप्रशस्त है, वो सर्व विशुद्धि में जघन्य शपक के अंतिम समय में यानी दसवें के अंत में, और यहाँ वेदिनीय नाम गोत्र ये प्रशस्त प्रकृति है विशुद्धि, वहाँ संकलेश कहाँ ज्यादा है, उपशम श्रेणी के उतरते हुए अंतिम समय में तो वहाँ होता है। यही कारण है यहाँ इन सातों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का को अजघन्य उसमें नहीं डालना है, अजघन्य का तो अंतर होगा ग्यारहवें गुणस्थान में, जघन्य के बाद और अजघन्य दो शब्द निकालो तो कैसे पढ़ना है। यही कारण है कि यहाँ इन सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल संभव न होने से उसका निषेध किया है, क्योंकि मूल में हमने पढ़ा था ना इसको, देखो अपगत वेदी में क्या देखा था, जघन्य का अंतर नहीं था और अजघन्य का जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त कहा था। अब यहाँ एक वाक्य आपको लिखना है, पहले मैं पढ़ती हूँ वाक्य है वो पढ़ती हूँ फिर से। इन सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल संभव न होने से उसका निषेध किया है। आगे एक वाक्य लिखिए, तथा हमने लास्ट टाइम लिखवा था अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, जघन्य भी और उत्कृष्ट उतना ही है जो ग्यारहवें गुणस्थान का काल है, जघन्य और अजघन्य का नहीं, अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर। आपने क्या लिखा है लास्ट टाइम, हाँ अभी लिखना और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल अजघन्य का जघन्य अंतर अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर आपने बराबर लिखा
है।
हाँ दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी, अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर लिखते तो भी चल जाते, आपने लिखा है तो भी निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ अजघन्य का जघन्य और अजघन्य का उत्कृष्ट हाँ अंतर्मूल, और ये अपेक्षा मालूम है ना ग्यारहवें गुणस्थान, हाँ। क्योंकि अपगत वेदी रखना है उसको और फिर नीचे बंद कराना है। हो गया। अब क्रोधादि चार कषाय वाले जीव में देखो, जैसे वेद में वेद के उदय रहते हुए उसके बंद विच्छिति नहीं हुई थी, ये कषाय मार्गणा में कषाय के उदय के रहते हुए भी पूरी बंद विच्छिति नहीं होगी किसकी, हाँ मोहिनी की भी, मोहिनी तो चल ही रहा है, लोभ में मोहिनी का बंद विच्छिति हो जाएगी तो, परंतु सवेदी की मार्गणा थी तो श्रीवेदी की सौपल्य पृथक्व था और पुरुषवेदी में इतना इतना था, हाँ तो इसमें क्या करेंगे अभी, अंतर्मूर्त काल,
हाँ।
तो जहाँ वेदिनी नाम गोत्र की वगैरह अजघन्य की बात होती है अजघन्य की, वो सोचेंगे देखो पहले पहले अंतर नहीं होता वो तो दोनों के लिए समान है। तो क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, शेष कर्मों का भंग मनोयोगी जीवों के, यानी क्या है शेष कर्म कौन से रह गए, आयु, अब कषाय का काल अंतर्मूर्त है, आयु तो एक ही बार बंधेगी तो आयु के जघन्य का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय होगा। वेदिनी नाम के लिए भी ऐसा ही है, सेम गोत्र के लिए क्या होगा, वही सातवें नरक का नारके लेना पड़ेगा, परंतु जघन्य दोबारा तो नहीं हो सकता उसी कषाय के रहते हुए, हाँ और अजघन्य किसके लिए, जघन्य के लिए, अजघन्य के लिए चार समय,
गोत्र का अंतर नहीं पड़ेगा ना,
गोत्र में अंतर नहीं, जगन्य में अंतर नहीं होगा, और जगन्य का एक समय अंतर पड़ेगा। इतनी विशेषता है कि लोभ कषाय में, अभी लोभ कषाय के रहते हुए मोहनीय कर्म के और जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओ के समान है। कैसे है? एक समय से अंतर्मूल। क्यों? क्योंकि दसवें तक लोभ कषाय है और बंध विच्छुति नवे में हो गए, वहां पर भी लोभ का उदय था अंत में, तो लोभ का उदय था तो तभी हम उसको लोभ कषाय वाला कहेंगे। तो उसने बंध विच्छुति हुई, वहां तो बंध हुआ था, उष्ण श्रेणी की बात है, तो जो हुआ था वो अजगर नहीं हुआ था। फिर दसवें में गया, दसवें में एक समय में मरकर देव हुआ तो लोभ के रहते हुए दोबारा बंध हुआ, तो एक समय हुआ, और अंतर्मूर्त रहे तक दसवें के पर समाप्त होने के पहले पहले मर गया, देव में गया तो भी लोभ कषाय रहा, तो उसने दोबारा बंध किया। एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक के सारे विकल्प हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा? लोभ कषाय में मोहनीय कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल लोभ के समान है। परंतु जैसे हम ग्यारहवें की बात कहते, अन्य तीन घाती में अंतर नहीं होगा, न जघन्य का न अजघन्य का। इसमें जघन्य का अंतर नहीं है क्योंकि वो क्षपक में लेना है। इसी का विशेषार्थ बता रहे, देखो पढ़ेंगे हम। क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। तथा शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल लाते समय पहले जिस प्रकार मनोयोगी जीवों के वह घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका काल अंतर्मूर्त होगा कषाय का भी और योगों का भी। मात्र ओग से मोहनीय कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त घटित करके बतलाया है, वह यहाँ लोभ कषाय में अविकल घटित हो जाता है, यानी वो दसवीं की अपेक्षा लेना, यानी दसवें गुणस्थान में एक समय से अंतर्मूर्त रहा, मरकर देव हुआ तो फिर दोबारा बंध किया, वहाँ ये हो सकता है। इसलिए यह कथन ओघ के समान कहा है। ओघ में तो चार घाती कर्मों को इकट्ठा लिया था, यहाँ तो केवल मोहनी को लेना, क्योंकि अन्य जो तीन घाती कर्म है वो लोभ कषाय के होते हुए अंतिम समय में जघन्य हुआ, तो उसका तो अंतर नहीं होगा जघन्य का। आगे अभी ज्ञान मार्गना की बात चल रही। मत्ति ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में अब ये सोचना है हमको, मत्ते ज्ञानी श्रुता ज्ञानी है और चार घाती का सर्व विशुद्ध में जघन्य होता है, तो कब होगा? संयम के समय। तो मिथ्या दृष्टि रहते हुए दोबारा वो संयम के सम्मुख होगा क्या? क्योंकि वो संयम ही हो जाएगा, यानी मति अज्ञानी है तो अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हो जाएगा। देखो चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के, गोत्र कर्म का भी नरक में लेना था और वो भी समय दृष्टि हो जाता है, उसकी मार्गणा बदल जाएगी, तो जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं, क्योंकि वो लगातार अजघन्य ही कर रहे हैं। जघन्य तो समय या संयम के सन्मुख वाले को होगा, तो बीच में जघन्य करके फिर अजघन्य ये बात हो नहीं सकती, इसलिए जघन्य का भी अंतर नहीं और जघन्य का भी नहीं। पांच कर्म तो यहीं निपट ले। शेष कर्मों का भंग नपुसक वेदी जीवों के समान, शेष ने वेदिनी नाम और आयु, वेदिनी नाम आयु में क्या लेना था हमने लिया था, आपको याद है? मत्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी कंटिन्यूस से एक समय से असंख्यात लोग लिया, और उसके अजघन्य के लिए आयु को अलग लेना। वेदिनी नाम के अजघन्य का अंतर कितना होगा? एक से चार समय। आयु के अजघन्य दो भाव लेना है, अजघन्य में नरकायु तो यही लेते हैं, तो शादी को अभी अभी हमने नपुसक वेदी में घटित करके देखा था ना, इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। मत्ते ज्ञानी श्रुता ज्ञानी कहने से पहले दोनों गुण स्थान आते। मिथ्या दृष्टि कहने से यानी वो तो सम्यक तो मार्ग नाम ही मिथ्या दृष्टि आता है, ज्ञान मार्ग नाम ही मत्ते ज्ञानी श्रुता ज्ञानी आते हैं, परंतु सभी कथन तो ऐसा ही होगा उसके लिए भी। मैंने सम्यक तो मार्गना की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि ये नाम बताया उन्होंने। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बनने का अंतरकाल नहीं है। विभंग ज्ञानी में भी चार घाती कर्म का संयम के सम्मुख होगा और गोत्र का सम्यक के सम्मुख नारकी है वो। गोत्र का सातवें नरक में सम्यक के सम्मुख उसकी जो वहां जगन्य करके उसकी मार्गना ही बदल जाती है ना। विभंग ज्ञानी से वो तो अभिनय बोधिक ज्ञानी हो जाता है, इसलिए लौट कर फिर जगन्य का भी अंतर नहीं होगा और अजगन्य का भी नहीं होगा। वेदनी और नाम कर्म के विभंग ज्ञानी में वेदनी और नाम कर्म मध्यम परिणाम में होगा। जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल सामान्य नारकियों के समान है। सामान्य नारकी क्यों? क्योंकि उसका विभंग ज्ञान लंबे काल तक चलता है, तो सामान्य नारकी में अधिक से अधिक विभंग ज्ञान कितने काल तक होगा? कुछ कम इसलिए कि विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है पर्याप्त होने पर। तो उसने शुरुआत में जघन्य किया, अंत में जघन्य किया, तो जघन्य के लिए एक समय से कुछ कम 33 साल है। और अजघन्य का 1-4 समय। आयु कर्म के मार्गना विभंग ज्ञानी की आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर मिलते हैं। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, जघन्य में जघन्य आयु कौन सी बंधेगी? तो 3 इंच आयु बंधेगी, वो भी मेरे ख्याल से लब्धि अपर्याप्त तक की बंधेगी।
ये तो कौन अपर्याप्त थोड़ी बांधेंगे देवना,
नहीं नहीं उसका अर्थ है वो मनुष्य 3 इंच बांधेगा। और मनुष्य 3 इंच का विभंग ज्ञान अंतर मुझ से ज्यादा नहीं होता और वो इतना छोटा है कि एक ही बार आयु बंधेगी। तो आयु का जो बंध का अंतर्मूर्त है उसने शुरुआत में जगन्य किया, अंत में जगन्य किया, ये हो सकता है। इसलिए जगन्य का बात जगन्य की बात है ना, यानी उसका रीजनिंग हमें चाहिए। आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी बांधने वाले जो है मनुष्य 3 इंच। हाँ वो कल वो बात उन्होंने उस त्रिवेदी में भी वही बात की, जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान ऐसा शब्द उन्होंने वहां पर भी यूज किया। लब्धि अपर्याप्त की आयु बांध बस इतना है। लब्धि अपर्याप्त 3 इंच की आयु बांध रहे, बांधने वाले मनुष्य 3 इंच है, इसलिए उनका विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त रहता है। और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय। अब अजघन्य देवनार की भी आ गए, इसलिए वहां उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना। अजगण्य तो कोई भी बांध सकता है, देवनारकी भी, और उनमें तो विभंग ज्ञान कंटिन्यूस है, इसलिए 6 महीना कुछ कम ले लिया। विशेषार्थ तीनों मिथ्या ज्ञानी जीवों में, तीनों मिथ्या ज्ञानी है नहीं, मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग ज्ञान, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध संयम के अभिमुख होने पर होता है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। ये तो समझ में जैसे इसी प्रकार गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सम्यक्त्व के अभिमुख हुए सातवें नरक के नारकी के होता है, इसलिए यहाँ इसके भी जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया। शेष कथन सुगम है, यानी वेदनीय नाम और आयु की बात तो बता चुके। अब अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में, अब ये चौथे से लेकर बारहवें तक के जीव, यहाँ पर भी क्षपक होगी ना, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, यहाँ जघन्य लिखा है वो निकाल दो, अंतरकाल नहीं है लिख, जघन्य शब्द निकाल देना, नथ्य अंतरम है ना, यानी जघन्य का अंतरकाल नहीं है, ये जघन्य शब्द दोपहरा पड़ा उनका, क्यों नहीं है? चार घाती कर्मों का तो क्षपक में होता है, और अभिनिबोधिक में कब होगा, गोत्र का जघन्य कब होगा? हाँ, चौथे गुणस्थान वाला, मिथ्या तो केशनमुख वाला, तो उसका अभिनिबोधिक ज्ञान नहीं रहेगा बाद में, इसलिए उसको नहीं लेना। हाँ, गोत्र कर्म का जघन्य समय दृष्टि में कौन बांधेगा, तो मिथ्या तो केशनमुख वाला ले। सातवें से चौथे,
चौथे के सम्मुख,
चौथा वाला मिथ्या तो के सम्मुख, और सातवें वाला कभी चौथे में आता नहीं, छठे से लेकर आता है, सातवां केवल मरे के तो ज्यादा है, पर वो संकलेश के कारण नहीं जाता है ना। ये हमारी मार्गना अभिनिबोधि ज्ञानी की चल रही 68 पेज पर, देखो यहाँ क्या कह रहे, चार घाती कर्मों का अंतर नहीं, क्योंकि अभिनिबोधि ज्ञानी में तो क्षपक श्रेणी है, तो जघन्य का अंतर नहीं होगा। अब कहते हैं गोत्र कर्म के भी जघन्य का अंतर नहीं है, क्योंकि अभिनिबोधि समय दृष्टियों में गोत्र कर्म का जघन्य कब होता है, चौथे गुणस्थान वाला, मिथ्यात्व के सन्मुख वाला, सर्व संकेश वाला, उसकी मार्गना बदल जाएगी, तो इसलिए उसका भी अंतर नहीं है, यानी चार घाती और गोत्र उनका अंतर नहीं है। 68 पेज पर, ये 159 नंबर का पैराग्राफ, हाँ वो जगन ने लास्ट टाइम निकाला था वहां पर 159 सेकंड ले, अभी हमने कुछ नया डाला था क्या? नहीं, हमने कुछ नया नहीं डाला। ये हो गया ना अभी, और जघन्य अनुभाग बंध का अंतर ओग के समान है। अब यहाँ ग्यारहवा गुणस्थान दी है, और हमारी मार्गना तो ये तो अभिनिबोधिक कुशुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी की है, तो यहाँ ग्यारहवें में गया, एक समय में मर गया, तो भी मार्गना चली रही देवों में, तो अंतर हो गया, या ग्यारहवें का पूरा करके नीचे आया तो भी अंतर्मूर्त घटित हो ही जाता, तो एक समय से अंतर्मूर्त होगा। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, अब ये मध्यम परिणाम वाला कोई भी हो, चौथा पांचवा कोई भी जीव हो, आगे का भी जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर, यह अभिनिबोधिक का रहने का काल साधिक 66 मध्यम परिणाम में, साधिक में तो वेदक प्लस शायिक भी लेना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन में एक वेदक शायिक सभी समय दृष्टि ले सकते, इसलिए साधिक 66 सागर। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर ओह के समान है, ये भी ग्यारहवें गुणस्थान में, एक समय से अंतर्मुख। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर सादिक छासर सागर। अब मनुष्यायु की जगन्य होगी ना, क्योंकि ये समय दृष्टि दो ही आयु बांधता है, देवायु और मनुष्यायु। तो मनुष्यायु का जगन्य होगा, अनुभाग बंध मनुष्यायु का जगन्य होगा ना, ये कह रहे
मनुष्यायु बांधी नहीं था,
मनुष्यायु बांधी उसने, जगन्य नहीं बांधी। हमने जगन्य के लिए हमेशा काय स्थिति लेते हैं, जैसे सामान्य से काय स्थिति लेते हैं। अब यहाँ समय ज्ञान की काय स्थिति क्या होगा, तो सादिक छात्र सागर, तो उसमें क्या लिया, देखो आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय, जब कभी आयु बंध रही बीच में जगन्य अजगन्य हो सकती है। उत्कृष्ट अंतर सादिक छात्र सागर है, इन्हें जगन्य में मनुष्य आयु को लेना था। कोई भी बांधी, देवायु भी बांधी, तो जगन्य में तो मनुष्य आयु को ही लेना पड़ेगा।
हाँ, हाँ। तो एक बार मनुष्य जगन्य बांधी, फिर लास्ट में छात्र छात्र के बाद कुछ पहले
जगन्य बांधी, जगन्य बांधी, नहीं बांधी थी वो बात नहीं, क्योंकि हर बार देव और मनुष्य ही करते रहेगा ना इतने, पर उसने जगन्य आयु नहीं बांधी, लास्ट में बांधी। और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओग के समान है, अजगन्य ने आयु ही, आयु का बंध होना, बस इतना ही लेना, तो सादिक 33 सागर हो जाएगा, यानी वंतर पूर्व कोटि और 33 सागर कुछ कम कर देना। इसी प्रकार अवधि ज्ञान दर्शनी दर्शन मार्गना में और सम्यक दृष्टि यानी सम्यक तो मार्गना में जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ इन तीनों चाहिए, दोनों ने तीनों सम्यक ज्ञानियों में, क्योंकि अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी लिखा है ना, तो इन तीनों सम्यक ज्ञानियों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में अपनी बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है। चार घाती को इकट्ठा लिया ना, इसलिए बंध विच्छित्ति, यानी मोहनीय का 9वें के अंत में और 3 का 10वें के अंत में, इस तरह से। और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख होने पर अंतिम समय में होता है, और वो भी चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सन्मुख है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध है दोनों ओर। तथा इन पांचों के अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल उपशम श्रेणी में उपशांत मोहगुण स्थान में एक समय रहकर मरण की अपेक्षा एक समय, और उपशांत मोह में पूरे काल तक रहकर उतरने की अपेक्षा अंतर मुहूर्त उपलब्ध होता है। ओग से भी यह इतना ही उपलब्ध होता है, इसलिए यह अंतर ओग के समान कहा है। ये तो हमने देखा था अभी वेदनी और नाम कर्म के अजगन्य की बात करें, अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय होने से इनके अजगन्य का काल बता रहे फिर से, वेदनी और नाम कर्म के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय होने से इनके जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय कहा। हाँ, यानी जगन्य अजगन्य जगन्य ऐसा किया उसने, यह संभव है। ये तीनों चाहिए सम्यक ज्ञानी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के प्रारंभ में और अंत में जघन्य अनुभाग बंध करें, और मध्य में अजघन्य अनुभाग बंध करते रहे। अपनी उत्कृष्ट स्थिति यानी वो सम्यक ज्ञान में रहने का उत्कृष्ट स्थिति, जो सादिक छासर सागर कहा था, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर सादिक छासर सागर कहा है। उसमें हमने देखा ना छासर सागर और चार पूर्व कोटि, इतना उसका काल होता। इन दोनों कर्मों के, कौन से दो की बात है, वेदनी और नाम, जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त ओग के समान यहाँ भी घटित हो जाता है। क्या 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 क्या, जघन्य का कैसे? और जघन्य चाहिए ना, ग्यारहवे गुण स्थान में अजगण्य का अंतर होगा ना, कुछ गलत हो गया उन्होंने छपने में। नहीं, ऊपर अजगण्य की बात बताई, उसका काल एक समय है
बराबर, जगण्य का तो जगण्य एक समय अंतर मुहूर्त।
एक मिनट फिर से, जहां हमने दोनों का तीनों किया था ना, यह संभव है, वहां से फिर पढ़ती हूँ कि तीनों समय ज्ञानी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के प्रारंभ में और अंत में जघन्य अनुभाग बंधक करे, मध्य में अजघन्य करे। इसलिए जघन्य अनुभाग बंधक का उत्कृष्ट अंतर साधिक शास्त्र से बड़ा हो गया ना। यहाँ तक समझ में आई? जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना है? समय क्रम में रहने का उत्कृष्ट काल है साधिक शास्त्र से। इन दोनों कर्मों के यहाँ अजघन्य होना चाहिए था। समझ में? देखो ऊपर पढ़ो, ये विशेषार्थ छोड़ो, मूल में चलो। वेदिनी नाम का क्या है? जघन्य का एक समय और साधिक छात्र और अजघन्य ओक के समान, यानी एक समय से अंतर्मुख। वैसे यहाँ इन दोनों कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का चाहिए, वो डालो वहां पर। पहले भी हमने कहीं तो डाला था, हाँ कल किया था क्या सबने? मयंक भाई समझ में है ना? हाँ, यानी वेदिनी और नाम के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, वो ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा यहाँ पर भी घटित होता है, क्योंकि हमारी मार्गणा तो सम्यक ज्ञानियों की, इसलिए वह ओह के समान कहा है। इसी प्रकार आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का यथा योग्य विचार कर अंतरकाल ले आना चाहिए, शेष कथन सुगम है। क्योंकि जघन्य के अंतर के लिए हम साधिक शास्त्र सागर कहेंगे और अजघन्य के लिए दो भवों में आयु बांधनी है तो साधिक तृतीय सागर का। यह हो गया सम्यक ज्ञानियों की बात। अब मन पर ज्ञानी जीवों में, इसमें भी क्षपक श्रेणी है, चार घाती कर्म। यहाँ गोत्र कर्म को भी लेना, कब? असंयम के सन्मुख वाले को लेना, जब मन परिज्ञान तो छूट जाएगा उसका, तो उसका भी जघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है, क्योंकि उसको मन परिज्ञान में रखना है, यानी ग्यारहवें का पूरा काल लेना है, क्योंकि मरकर देव हो जाता है तो मन परिज्ञान छूट जाता है, तो उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त लेना। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। मन परे ज्ञान में रहने का जो काल है तो कुछ कम पूर्व कोटि होगा ना, क्योंकि आठवें साल के बाद जब संयम धारण किया, मन परे ज्ञानी हुआ वगैरह वगैरह, कुछ कम कर देना। ये दोनों और उसने जघन्य किया वेदिनी नाम का, इसलिए बीच में उसका अंतर पड़ गया। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समान है, एक समय से अंतर मुक्त, क्यों? ग्यारहवें गुणस्थान में बंध नहीं था उस अपेक्षा से, और अजघन्य का अंतर एक समय मरण की अपेक्षा नहीं होता है, वो बीच में उसने जघन्य किया इसलिए होता, क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य है तो अजघन्य के बीच में जघन्य कर ही सकता है। एक समय से चार समय तक तो वहाँ होगा और पूरा अंतर्मूर्त तो ग्यारहवें में होगा। यानी इसमें कितने विकल्प हो गए? एक दो तीन चार समय हो सकते हैं और अंतर्मूर्त हो सकता है, बीच वाले दस समय वगैरह नहीं घटित हो गए। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अभी आयु कर्म एक ही भव में बांधना है उसको, क्योंकि मनोपरिज्ञान एक भव में ही होगा, और वंतर पूर्व कोटि पहले वह बांधेगा, आठवें अपकर्ष में फिर बांध सकता है। तो कहते हैं आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण। वो एक बार जो आयु बनती है उसमें ही जघन्य अजघन्य दोनों का ही बंध कर सकता है। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि वो संयम संयत जो मार्गना है, संयम ही जो है वो भी पूर्व कोटि के एक ही भव में घटित करना है, और वो भी कुछ कम पूर्व कोटि उसका काल है। विशेषण, मन परिज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में अपनी विच्छित्ति के अंतिम समय में, और हमने देखा था और असंयम के अभिमुख, ऐसे शब्द डालो, क्योंकि सबको इकट्ठा लिया उन्होंने, चार घाती कर्मों का तो क्षपक श्रेणी में होता है, अंतिम समय में लिखा ना उसके ऊपर आगे डालना और असंयम के अभिमुख। मन परिज्ञानी इसलिए असंयम को लेना, अगर संयमी है तो हमको मिथ्या तो के अभिमुख कह सकते थे, अभिमुख के होता है। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। मनोपरिज्ञानी जीव उषम श्रेणी पर आरोहण कर यदि मरता है तो उसके मनोपरिज्ञान नहीं रहता, अतएव मनोपरिज्ञानी जीवों में उक्त पांचों कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल उपशम श्रेणी पर आरोहण अवरोहण की अपेक्षा ही संभव है। यतः उपशांत मुह का स्वस्थान की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः यहाँ पांचों कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त, यानी पूरा वो ग्यारहों का पूरा काल लेना, मोहिनी के लिए 10, 11 फिर 10, अंतर्मूर्त तो कथन दोनों के लिए समान है। मन परे ज्ञान का उत्कृष्ट अवस्थिति काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। किसी जीव ने मन परे ज्ञान के सद्भाव में एक समय के अंतर से वेदनी और नामकर्म का जघन्य अनुभाग बंद किया शुरुआत में, और किसी ने मन परे ज्ञान काल के प्रारंभ में और अंत में, एक समय के अंतर से किया तो जघन्य का एक समय अंतर हुआ, और प्रारंभ में और अंत में किया तो उत्कृष्ट अंतर हुआ, और मध्य में अजघन्य अनुभाग बंध करता रहा तो यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि उपलब्ध होता है। जहाँ मध्यम परिणाम में है वहाँ उसकी जो हम मार्गणा देख रहे हैं उसकी पूरी स्थिति या काय स्थिति जो उसको हम नाम दे सकते हैं उसको ले लेना। यही कारण है यह उक्त प्रमाण कहाँ है, ओव से इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त घटित करके बतलाए हैं। किसका कौन से कर्म की बात चले, वेदनीय नाम वो तो कहीं पर भी जघन्य हो सकता है मध्यम परिणाम में, तो अजघन्य का अंतर एक समय भी हो सकता है, और जघन्य का अंतर चार समय तक भी हो सकता है, और अंतर्मूर्त भी हो सकता है, यानी एक से चार समय तक के चार विकल्प अलग हो गए, और दूसरा अंतर्मूर्त का पूरा अंतर्मूर्त लेना, क्योंकि मन परे ज्ञान छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ओग के समान कहा, पर ओग में एक समय से अंतर्मूर्त तक कुछ भी विकल्प हो सकता है, यहाँ तो हमने जघन्य और उत्कृष्ट ये दो ही विकल्प बताने थे, मध्यम के कितने विकल्प होते ये अपना विषय नहीं था, इसे ओग के समान बताया। शेष कथन सुगम है, अब सुगम यही रुकते हैं क्योंकि नई मार्गणा चालू होते हैं ना सामयिक। चावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।